ீகரான்வனீரீதாம்பராதண்டம்பராதரோஷாத் பூர்ணேந்திரசுந்தர முகாதரவிந்தநேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே. ஞானாபியாசவசீகதேன மனசா தன்னிருவுணம் நிஷ்க்ரியம் ஜோதிசிந்தனயோகினோ யதி பரம் பஸ்யந்தி பஸ்யந்ததே. அஸ்மாகம் சு தேவ லோசன சமத்காராய பூயாச்சிரம் காலிந்தி புலிமேஷு யத்தினபுதம் நீலம் போபாவதி. ஸ்ரீஹரி.
देता है अपने प्रभु को, ये प्रभु ने कराया हमने किस योग्य था, ये केवल कहता नहीं वो समझता ऐसा ही है, उसकी अनुभूति ऐसी होती है, उसको अपने में कमी दिखाई देती है, कमी केवल वो कहने के बाद नहीं होती, तो वो कहता है कि मैं तो भव सागर में डूबा हुआ तो इसलिए साधन साधक भक्त जो है ये बहुत सार्थक सिद्धावस्था में भी वही श्रवण कीर्तन वही काम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम यही काम सिद्धावस्था साधनावस्था में ये इनके जीवन के साधन है, सिद्धावस्था में ये इनका स्वरूप है स्वभाव। शनकाजी क्या करते हैं, नारद दिन भर क्या किया करते हैं, भगवान व्यास क्या करते हैं, शंकराचार्य ने जीवन भर क्या किया, दूसरा काम ही नहीं, केवल भगवत गुण श्रवण मनन निधि ध्यासन उसी में डूबे रहना। बोले इसका तो फल मिल गया तो क्या करें, इसको छोड़ दें, वो नाव थोड़ी है कि जिसको पार करके छोड़ दिया, ये तो भगवान के नाम गुण का चिंतन स्मरण मनन ये तो जीवन का जीवन है। तो ये बहुत कार्य करने के बाद इन्हें भाव प्राप्त होता, भाव दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेम का अंकुर जो उसे भाव कहते हैं, और एक प्रेम की जो सातवीं दशा होती है उसे भाव कहते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो कहते हैं कि प्रेम की जो प्रथम अवस्था है प्रेमनिष्ठ प्रथम अवस्था भाव इत्यभिधीयते सात्विकः स्वल्प मात्राशु रक्तराशु तुलकादयः। कहते हैं कि प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम भाव है, भाव का उदय होने पर भाववान भक्त में थोड़े मात्रा में अश्रुपूर्वकादि सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, पर केवल अश्रुपूर्वक ही हो जाए, किसी से कोई ये न समझ ले कि भक्ति प्राप्त हो गई है। कमजोर प्राणियों में भी बात बात में आंसू आते हैं, किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी भी बात को सुनकर कांप जाता है। तो अश्रुकंप दो तरह के होते हैं, एक अश्रुकंप होते हैं भाव जनित, एक होते हैं नैसर्गिक स्नाविक दौर्बल्य को लेकर। तो जहाँ स्नाविक दौर्बल्य है उसका नाम भाव नहीं है, तो उसको सात्विक विकार नहीं मानना चाहिए। उसको अगर सात्विक विकार मानने और ये समझ ले बोले मैं तो हो गया, मेरे तो आंसू आने लगे, अब मैं तो सिद्ध हो गया। किसी किसी के आंसू बिल्कुल नहीं आते लेकिन भावोद्गम होता है। उस दिन कथा सुनाई थी आपको, भट्ट जी थे, गदाधर भट्ट दो हुए, तो वो भट्ट जी बड़ी सुंदर कथा कहा करते थे श्रीमद् भागवत की। उस कथा में जब कभी बड़ा सुंदर प्रेम का विषय आता, रस का विषय आता, तो उनकी वाणी से व्रस मंदाकिनी बहती, स्वाभाविक रस वर्षा होती, तो तमाम श्रोताओं के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती। उनमें एक महंत आया करते थे। वो महंत बेचारे थे वास्तव में बड़े भावुक, बड़े प्रेमी, पर कुछ ऐसा उनका हृदय का काठिन्य था या क्या था, उनके आंखों में आंसू ना आवे। तो केवल आंसुओं पर ही भक्ति का मोल तोल करने वाले लोग, आंसू आ गए तब तो प्रेम, और आंसू ना आए तो प्रेम नहीं। आंसुओं पर भक्ति को आंकने वाले लोग जो थे, वो उन बिचारों का उपहास करने लगे। रोज रोज उनसे कहें, बोले तुम तो पत्थर के हृदय हो, तुम्हारा तो वज्र का हृदय है, इतनी सुंदर सती धारा बहे और तुम्हारे जरा सा भी आंख में एक बूंद पानी भी ना आवे, तुम बड़े कठोर हो। अब वो बेचारा सुनते सुनते तंग आ गया, कथा में आए बिना रहा न जाए, और आए तो इस प्रकार से रोज रोज उपहास और रोज रोज व्यंग सुनना पड़े। तो बिचारे ने उपाय किया, लाल मिर्च पीस करके उसका चूर्ण बनाया, छान कर काजल सा, और में उसमें धौता नहीं था कि आप पे जमा नहीं आया। तो वो उसने एक रुमाल में उसे काजल शरीर था, वो चूर्ण था बड़ा नहीं, तो उसको बांध लिया, पोटली सी कर ली और रुमाल में लपेट करके, जब आंसू आए उस समय वो आंसू पोंछने के ढंग से और यूं लेकर के उसको मिर्च वाली पोटली को आंसू में लगा दे, तो मिर्च लगने से खांग का पानी आ जाए आंखों में से। तो दूर बैठने वालों ने तो सोचा कि अब तो ये भक्त हो गया, अब तो भक्त हो गया, देखो ना उसको भी आंसू में आंसू आने लगे और ये आंसू पोंछने लगा। लेकिन पास बैठे और जिनका काम कथा सुनना नहीं होता है ना, ये श्रोताओं में भी बच्चाओं में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं, बोले ध्यान लगाने बैठो तो अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, किस किस से नहीं लग रहा है जो देखेंगे। स्वभाव की बात है। तो वो बेचारे जो पास बैठे समीप, उसको उनको मिर्च की भांस आई और कुछ पता अंदाज हुआ, तो उन्होंने इतने भाप लिया जो तो मिर्च है। अब उसके रहा कैसे जाए। देखिए ये मैं मजाक की बात नहीं कहता, ये मनुष्य के स्वभाव की बात कहता हूँ। जिनको परनिंदा परापवाद में आनंद आता है, वे परापवाद का मौका वैसे नहीं चूकते जैसे ले ही आदमी धन प्राप्ति का मौका नहीं चूकता, बड़ा रस आता उन्हें। तो वो बात उनकी देख ली कि ये मिर्च लगाते हैं आंखों के, अब उनसे कब कथा जल्दी पूरी हो तो जल्दी से जल्दी ये बात कहें महाराज जी से कि देखो वो कितना धूर्त है और कितना गंभीर है। अब कथा तो महाराज जी समय पर ही समाप्त करें, पर इससे अब कथा तो भूल गया ये, अब जल्दी से कहें ये बात इसके मन में आई। कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त हुई तो बस ये जब सब लोग गए तो बैठा रहा, तो भरजी ने पूछा भाई क्यों बैठे हो बताओ। बोले महाराज बहुत देर से बैठा हूँ, एक बड़ी जरूरी बात कहनी। इतनी जरूरी बात है कि वो सबके सामने कहना तो ठीक नहीं, लेकिन आपको सावधान करना बड़ी जरूरी बात है। भगजी ने कहा क्या सावधान करेंगे क्या, तो बोले आप बड़े भोले आदमी हैं, कथा में सब लोग आते हैं क्या, सभी कथा सुनने आते हैं, सभी अच्छे लोग आते हैं। तो भगजी ने कहा कि सभी अच्छे आते हैं, कथा सुनने को खराब आदमी क्यों आवेगा। अरे भगवान कथा सुनने सभी अच्छे आते हैं, कोई बुरा नहीं आता। मेरे आपको पता नहीं, बोले हम महंत आता है बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरे अच्छे आदमी क्या है, मैं तो पास बैठता हूँ उनके, वो आंखों में उनके आंसू आते नहीं, इतने दम्भी आदमी हैं, इतने धूर्त हैं कि मिर्च पीस करके ले आए लाल और उसको आंखों में लगाने लगे पानी आने के लिए। तो भतुजी को भतुजी का भाव बदला। भतुजी ने कहा ऐसा तुमने आंख से देखा। बोले हाँ देखा तो सही, तभी तो कह रहा हूँ। बोले तुमने बड़ा उपकार किया, तुमने तो आज भतीजी की महिमा मेरे सामने मिलकर सुना दी। हाय हाय, मैं तो सुनता था कि जिन आंखों में प्रेम के आंसू न आने उन आंखों में धूल डालनी चाहिए। भर भर मुठी डालिए तीन आंखन में धूल, और भटजी तो मीठे लगाते हैं। इतने बड़े भक्त, इतने बड़े प्रेमी राम राम, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा अभी उनके। कहां तो चुगली करने आया। अब ये अपनी अपनी आंख की बात, भाव की बात। भटजी तो उठे और सीधे महन जी के यहाँ पहुंचे। ये पीछे पीछे जाके फिर क्या होता है, महन जी के पास जाकर के दूर से चंद्र चले गए। महन जी महाराज प्रणाम, मैं बड़ा अज्ञानी था, मैंने आपके स्वरूप को समझा नहीं। इतने बड़े महात्मा आप हैं, मैंने मेरे ध्यान में बात नहीं आई थी अब तक। महन जी विचारों का होश उड़ गए कि शायद हमारी वही पोल खुली होगी। पोल तो खुली थी पर देखने वाले की आंख दूसरी थी। कहा महाराज, महन जी ने प्रणाम किया, कैसे क्या बात हुई? तो बोले महाराज, मैं कथा में बांटता था, लोगों को सुनाया करता था कि जिन आंखों में प्रेमाश्रु नहीं आते वे आंखें फूट जाए, उन आंखों में धूल डाल दी जाए, ये बड़ा अच्छा है। पर मैंने तो कभी आज तक धूल अपनी आंख में धूल डाली नहीं। आज मुझे पता लगा कि आपके आंसू नहीं आते इसलिए आपने आंखों में मिठगार के दंड दिया उनको। इतने बड़े महात्मा, मुझे आपका परिचय नहीं था महाराज, मैं तो चरण धूल लेने आया। सचमुच आज उनके आंसू की धारा बह चली, आंसू की धारा बह चली आज। तो ये बात तो ये थी कि बात चली थी इस पर कि आंसू आने से ही कोई भक्ति का ठीक ठीक प्रमाण हो जाए सो बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम में भगवान में जिनको प्रियता होती है ये स्वाभाविक बात है। वा गदगदा द्रवत ये सचित्तम एवं बच्चे स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाचा निरागो दुर्त चित्त उच्च ही हसत कथा रोगित रोजगार लोक बाह्य। जहाँ भी प्रेम होता है, प्रेमी का जहाँ प्रेमास्पद के साथ मानस मिलन होता है स्मृति के रूप में, वहाँ तन में रोमांच होना, पुलकित हो जाना, आंखों में सुपाश होना, हृदय का द्रवित हो जाना, ये एक लक्षण होता है। ये फाटे हूँ फूटे हूँ नयन जड़ उस तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुल करी नहीं तुलसी सुमिर कराम। भगवान राम का स्मरण होते ही जो हृदय द्रवित नहीं हो जाता वो तो फट जाना चाहिए। ये फाट हूँ जिन नेत्रों में अश्रुपात न हो वो तो आंखें फूट जानी चाहिए, और जिस शरीर में पुलकोदगम न हो रोमांच न खड़े हो जाए उस शरीर को जल जाना चाहिए। ये फाट हूँ फूटे हूँ नयन जड़ उसे तन कही काम, द्रवई स्रवई पुल कई नहीं तुलसी सुमिर कराम। तो ये स्वाभाविक, प्रेमी को जब प्रेमास्पद का स्मरण होता है तो एक अभिनव आनंद मिलता है। वो आनंद मिलनानंद की अपेक्षा भी कहीं अधिक होता है। इसका पता भुक्त भोगियों को ही है, अथवा अच्छी भाषा में कहें तो अनुभवी लोगों को है। भुक्त भोगी का अर्थ ये कि जो भगवान के विरह की ज्वाला में जलते हैं, जो इस ज्वाला में जले उनको पता है कि इस ज्वाला में कितनी शांति है, इस आग में कितनी ठंडक है। मान पड़ाते महारस माने देख नारा दाजे जो गुजराती का पद है, प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला भाली पाछा भागे जो ने माही पड़ा ते महारस माने देख नारा दाजे जो ने। कहते हैं कि जो प्रेम का पथ है ये अग्नि की ज्वाला है, लपट उठ रही है भयानक, तो इसको देखते दूर से भाग जाते हैं जो लोग अपने को बचाकर प्रेम करना चाहते हैं। वो ये समझने की बात, अपने को बचाकर प्रेम नहीं होता, अपने को खोकर प्रेम होता है। अपने लिए प्रेम नहीं होता, प्रेमास्पद के लिए प्रेम होता है। ये प्रेम का स्वरूप है। तो अपने को बचा कर जो प्रेम करना चाहते हैं वो तो प्रेम के आदमी को देख कर भाग जाते हैं, लेकिन उस आग में जो कूद पड़ते हैं माँ ही पर्या, बस उनको सरस रस वो शीतल स्निग्ध से वो अमृत रस प्राप्त होता है कि वो निहाल हो जाते हैं, और जो दूर से देखते हैं देखनारा दागे देखने वाले जलते हैं। तो ये वास्तव में ऐसी बात है कि भक्ति प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमास्पद की स्मृति से प्रेमास्पद में भावांकुर उत्पन्न हो जाने पर स्वाभाविक अश्रुकंप ये होते ही हैं। तो कहते हैं कि ये अंतकरण जो है ना, उसमें जितना जितना त्याग आता है उतनी उतनी सात्विकता आती है। तो सात्विक भावों के उदय के कारण से और चित्त में ये चीज आती है। ये श्री कृष्ण के भाव से जब तक चित्त आक्रांत नहीं होता तब तक असली आंसू नहीं आते, असली कंप नहीं होता। तो जैसे कहते हैं कि सूर्य जैसे कुछ पूर्व ही जब पूर्व गगन पूर्वाकाश जब अरुणित होता है उसी समय जगत का अंधकार दूर होने लगता है, हिंसक जंतु से भागने लगते हैं रात्रिचारी। इसी प्रकार प्रेम के सूर्योदय होने के कुछ पूर्व ही साधक हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की अंश छटा अरुणित होती है, वो लालिमा आ जाती है, उसी समय ज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। कामना वासना विषयाभिनिवेश इत्यादि जो महाहिंसक जंतु हैं जो दिन रात हमारे जीवन को खाए जा रहे हैं ये सब भय से भागने लगते हैं। इस पूर्वावस्था का नाम भाव है। तो सेवा कीर्तन आदि साधन ये भक्ति के अंगों का आयोजन करके करके इस भाव की प्राप्ति होती है। कहते हैं विषय वासना ये सगुण निर्गुण भगवान क्या है क्या, ये तो हम लोगों की पीछे वालों की गड़बड़ी की बातें हैं। कभी देखने के मन में आया क्या कि ये भगवान है या भगवान नहीं है? पर क्या भगवान की मान्यता उनके मन में नहीं भी थी क्या कभी? और होने पर भी क्या वो भगवान के भगवान मानती थी क्या? दोनों बात ये जैसे भगवान में परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, विरोधी धर्म गुणाश्रय भगवान है, इसी प्रकार इस प्रेम में यहाँ कहते हैं नखल गोपिकानंद भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म दुख विखन साधित सत्यताम पूरे। कौन सी चीज बात रही है? नखल गोपिकानंद भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म दुख, ज्ञान है कि नहीं? लेकिन इस ज्ञान को लेकर के वो कहीं भगवान भगवान थोड़ी कहती है न उसमें ज्ञान में वो न चित्र महात्मा स्मृति आगवादा है। नारद जी का सूत्र है यथा ब्रज गोपी का नाम कहने के बाद नारद जी कहते हैं कि उसमें ये महात्मा की स्मृति का अपवाद नहीं है, भगवान तो है ही। ये गोपियां कोई बद्ध थोड़ी थी, ये संसार से मुक्त रही, मुक्त होने पर ही तो भगवत प्रेम मिलता है। संसार के विषयों के कीड़े हम लोग जो है एक प्रेम के बाद भले ही कर लें, प्रेम मिलता कहाँ? जहाँ भोगों पर हमारी दृष्टि ललचा ललचा कर जाती है, जहाँ संसार के रूप रस गंध हमारी वृत्तियों को खींच लेते हैं, वहाँ भगवत प्रेम कहाँ है? प्रेम के बाद कहते हैं अच्छी चीज है। तो श्रद्धा का ये स्वरूप है, श्रद्धा सुदृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धामान आदमी जब भजन करने लगता है तो भगवान उसके पास साधु भेज देते हैं, साधु संग। भगवान उसके पास साधु संग का अर्थ भी यह है कि जिसके संग से हमारे जीवन में साधुता आ जाए, बस यही बात है। साधु का संग ये कौन कैसा महात्मा है कौन कैसा महात्मा नहीं ये छानबीन करने का निर्णय करने का अपना न अधिकार न योग्यता, क्या पता लगे कौन कैसा है कि सुषुम वेद जो शुद्ध वस्तु है, किसने आत्म साक्षात्कार किया, किसको भगवान वेद जीतते हैं, क्या पता जो कैसा वेद जी से झूठ बोलता हो, और क्या पता जो कहे नहीं उसके साथ ही भगवान रहते हो, कौन जानता है इस बात को, तो ये तो पता लगना सहज नहीं। लेकिन एक पता वो अपनी कसौटी है, जिसके संग से, जिसकी बातों को मानने से हमारे जीवन में दैवी संपत्ति का उदय हो जाए, हमारे जीवन में साधुता आ जाए, असाधुता मरने लगे, तो समझना चाहिए कि साधु संघ हो रहा है। साधु संघ का ठीक ठीक लक्षण है भगवान की ओर जीवन की प्रवृत्ति हो जाना, भजन होने लगना। साधु संघ का अर्थ है भजन होने लगना, और जिस साधु संघ से भजन नहीं होता, साधु श्रद्धा तथा साधु संघ तो भजन क्रिया, साधु संघ होने पर और भजन न हो, भजन छूट जाए और किसी काम में मन लग जाए, तो समझना चाहिए कि चाहे वो साधु होंगे पर हमने साधु संघ नहीं किया, हमको साधु संघ नहीं मिला। साधु संघ अगर मिलता तो भगवान के भजन में हमारी रुचि होती, भजन में मन लगता, भजन रूपी साधन हमारे जीवन में आ जाता, भजन बनता। मेरे साथ भजन अभी तो जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा इसका भजन बनेगा, अरे शुद्ध के भजन करेगा। ये एक बड़ी बाधा होती है मनुष्य के जीवन में, वो समझ लेते हैं अपनी, बोले साहब भजन कैसे करें, हम तो पापी हैं और पापी के द्वारा भजन होता नहीं, ये पहले शुद्ध हो जाएंगे तब तो भजन करेंगे, शुद्ध तो शुद्ध बनोगे कैसे भजन के बिना, वो तो भजन करने पर शुद्धाचार है अति, वहाँ पर वो दुराचारी है ही, छूटा थोड़ा ही है, पर वो जब भगवान के सामने त्राय त्राय कर उठा, एकमात्र भगवान के शरण मानकर, तब भगवान ने कहा कि बस शिक्र भय धर्मात्मा शांत करने साधु मंत्रव्य साधु मान लो उसे, तो अनर्थ की निवृत्ति भजन के बाद होती है, तथे अनर्थ निवृत्ति त्याग। जब भजन होने लगता है पहले होती है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद श्रद्धा के मोटा रूप समझिए तीन श्रद्धा है, श्रद्धा में तीन बात होनी चाहिए, बहुत प्राइमरी क्लास की चीज, बड़ी सुंदर सबके काम के, भगवान है ये सबसे पहली बात, भगवान है ही नहीं, भगवान के होने में संदेह है तो भगवान का भजन कोई कैसे करेगा, फालतू बात, भगवान है और भगवान की प्राप्ति होती है तो दूसरी श्रद्धा, और मुझको भगवान की प्राप्ति होगी ही ये तीसरी श्रद्धा, ये श्रद्धा ये जब होगी तब प्राप्ति कैसे हो, इसके मार्ग जानने वालों की खोज होगी, वो बता दे वो भगवान की डगर बता दे कोई, जिस मार्ग से हम होकर के जाए तब साधु की खोज होगी, साधु की खोज बिना श्रद्धा का नहीं होगी, जब साधु की खोज होगी तो साधु बता देगा साधन, इस प्रकार भगवान का भजन करे। वहाँ पर अगर विवाद करने लगे, बोले ये तो महाराज ठीक नहीं, ये तो आपकी के बाद उनसे नहीं मिलती, ये उनसे नहीं मिलती, वो बेचारा साधु है तो कहेगा अच्छा भाई तुम दूसरी बात मान ली, और कहीं विवाद में पड़ गए तो मारे गए वो भी और वो भी दोनों ही, तो साधु के कहे अनुसार से भजन करना, भजन के बिना ये आगे नहीं बढ़ा जाता। बारी मथे बई हो घट चिकता से बई तेल, बिन हरि भजन न भर करिए ये सिद्धांत या तेल। ये तेल खाते की बात हम लोग बहुत करते हैं, तो साहब हमसे तो भजन तो होता नहीं, हम तो बस करने आ गए, भगवान सारा काम कर देंगे, अरे भगवान कर देंगे तुम्हारे लिए तेरे का क्यों कर देंगे, भगवान सबका क्यों नहीं कर देंगे, क्या आपत्ति है, भगवान सब समर्थ है, अगर वो बिना किसी कारण से करना चाहे तो सभी का कर दें, और भगवान की आंख में चाहे तो भगवान जानते हैं वहाँ के अकल्याण कल्याण हरि में कल्याण भी खुद बन रहे, जीव खुद बन रहे, भोक्ता स्वयं भोग स्वयं, वो सब कुछ यही है, उनकी आंख में तो वो एक ही अनेक बने रम रहे हैं। एक ओम बहु श्याम एक आखिर में रम थे, खेलने के मन में आगे तो लगे खेलने, तो उनकी आंख तो उनके पास रही। हमारी आंख जो है, हमारी आंख से जो हम जो सुख पाते हैं, जीव हैं और जीव हैं, तो ऐसी अवस्था में हमको भजन से भागना और भजन में ये मन में समझना कि ये तो हमसे तो होगा नहीं, तो रोटी कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, कमाने जाते कैसे हैं, ये सारे काम तो होते हैं, उन कामों में तो आलस प्रमाद आता तब भी फिर सावचेत होते हैं, और केवल भजन में मानने के इसमें तो हम असमर्थ हैं, और सारे कामों के बड़े बड़े समर्थ, और उनके लिए न मालूम क्या क्या उद्योग करते हैं। मामूली उद्योग करता है कि आदमी संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितना चिंता करता है, कितना परिश्रम करता है, कितना आयास होता है, कितनी खुशामदें होती हैं, कितना झूठ बोलता है, न मालूम कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। कि भगवान का भजन न हो, ये केवल और केवल हमारे प्रमाद की बात है, ये हमारी बदमाशी है, ये हमारे मन का धोखा है कि हमसे भजन क्यों नहीं भजन होता। अगर इसमें हमारी रुचि है, अगर हमारी रुचि है तो भजन होता क्यों नहीं, ये कहा जाएगा कि रहा नहीं जाता, भजन करना नहीं पड़ता जब भजन होने लगता है, भजन छूटता नहीं। छूटे कैसे, अगर कहीं श्वास रुके तो भजन छूटे, दम कहीं रुक जाए तो कैसी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार तद विस्मरण परम व्याकुलता, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरण परम व्याकुलता। जिस समय भगवान की स्मृति हो जाए, क्षण भर के लिए भी भगवान चित्त इसे अलग होते दिखाई दे, व्याकुल हो जाए तो भूले कैसे। भूल राजा से किसी ने कहा तो प्रेम संकट में आया, बोले तुम भूल जाओ ना, अरे जो इतने निष्ठुर हैं, जो याद भी नहीं करते, तुम्हारी क्या दशा हो गई, तुम भूल जाओ। तो राधा ने कहा कि मैं कौन सा याद रखने का अभ्यास करती हूँ, ये प्राण जो है ना, ये प्राण कृष्णमय हो गए हैं, ये प्राण उन्हें भूलते नहीं, प्राण उन्हें छोड़ना चाहते नहीं, मैं छोड़ू कैसे। इसका नाम है भजन। भजन जो है ये पहले पहले तो किया जाता है, फिर किया नहीं जाता। हम शरीर का भजन दिन भर करते हैं, सोते सोते करते हैं, रात दिन शरीर की सेवा में लगे रहते हैं हम, और कहानी क्या, हमारे जो भी काम है संसार में, शरीर को आराम मिले नाम का नाम हो, दोनों मिथ्या चीजें हैं भला। हम जानते हैं शरीर का निर्माण माता के उदर में हुआ, और शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा उसके बाद भी रहेगा, तो ये पीछे से बनी हुई चीज ये हम तो नहीं है, और नाम तो ये तो प्रसव के बाद रखा गया, न मालूम कितने बदले जाते हैं नाम, हम खुद बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं, आश्रम बदला, नाम बदला, कभी बना उसको नाम रख लिया, नाम बदल गया। नाम में क्या थे, नाम ये मिथ्या आयोग तो वस्तु, किन्तु इस नाम रूप का भजन हम कितना करते हैं। देखिए बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान लोग जो बहुत बड़ी 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 मैं ज्ञान की बातें जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वे भी बहुत अंश में, बहुत अधिकांश में, महात्मा लोग तो सभी जगह होते हैं, अधिकांश में वो नाम रूप के भजन में लगे। व्यक्तित्व सामने आता है, भगवान का अस्तित्व नहीं आता। व्यक्तित्व और वस्तुत्व ये सामने रहते हैं, भगवान का अस्तित्व व्यक्तित्व और वस्तुत्व को खा जाए ये नहीं होता। तो ये बड़ी कठिन बात है कि भजन जो है ये नहीं होता, ये किसी को नहीं कहना चाहिए, ये पोल है, मन का धोखा है। ये कहना चाहिए कि भजन हम करते नहीं, करें तो क्यों नहीं होगा, हम भजन के लिए प्रयास करें तो भजन क्यों नहीं होगा। जीव अपने पास है, भाई कोई कहे कि हम 1000 रुपया कमाएंगे आज, तो कमाना तो अपने हाथ नहीं है, 1000 रुपये कमाना अपने हाथ नहीं है, वैसा कोई काम मिल जाए तो कमाया जाए। पर हम आज सवेरे कहें हम 1000 नाम लेंगे और नाम लेके उठेंगे तो कौन रोकता है, گھر والے کام کرنے سے اگر آپ با جائیں گے تو روکیں گے بھیا فالتو ہو گئے ہم کرتے رہیں جیب نام جپتی رکھ لیں تو نام بےچارا کیا کرے. اور کرم کا ونود میں تو کہا کرتا ہوں کہ نوکری ملنا کٹھن ہے اور بھگوان کا ملنا سہج ہے. پھل کے روپ میں ہزار چیشٹا کریں ہزار کیا کریں نہیں ملے, پر بھگوان کرم کے پھل تو ہیں نہیں کہ آپ کہیں جا کے انکرت ہوگا اور پھر پل بھی ٹھوگا پشپت ہوگا پھلت ہوگا, یہ تو ہے نہیں. وہ تو چاہ کے وسطو ہیں, جہاں چاہیے وہاں ہیں, جب چاہیے تب ہیں, اور جس کو بھی اس کے لیے سدائیں شربت کریں سب کے ہیں تو ان کے ملنے میں کیوں ولمب ہے, ہماری چاہ نہیں ہے. تو بھگوان کا بھجن ہوتا نہیں, یہ بہت ہمارے پاس روز ہی پائے ایسے ایسے بھائی بہن آتے ہیں جو کہتے ہیں بولے بہت من تو بہت کرتا ہے پر بھجن ہوتا نہیں. یہ اپنی جان میں سچ بولتے ہیں, ان پر میں آکشیپ نہیں کرتا, ان کی اچھا بھی ہے. پر سچی بات یہ ہے کہ جس لگن سے ہم سنسار کی چیز کو دیکھتے ہیں اس لگن سے ہم بھگوان کو نہیں دیکھتے. اگر دیکھتے ہوتے تو جیسے سنسار کی چیز نہیں بھولی جاتی نہیں بھولی جاتی, اسی پرکار بھگوان نہیں بھولے جائیں گے نہیں بھولے جائیں گے. ان کا بھجن اپنے آپ ہوگا, اور جب بھجن ہونے لگے گا تو انرتھ نوتی ہو جائے گی. انرتھ جو ہے نا یہ وہیں تک رہتے ہیں جہاں تک بھجن نہیں ہوتا. بھجن ہونے پر تمہیں بول دینا بھیا, بھجن ہونے پر انرتھ کی نوتی ہو جاتی ہے. تو یہ مہاتما لوگ جو تھے بھجن کے بعد سناتن گوسوامی وغیرہ کی رگناتھ گوسوامی وغیرہ کی نشاد لکھتے ہیں کہ ساڑھے سات پرہر جائے بھکتی سادھن چاری دند وشرام تاہو نوہے کوم جن. کہتے ہیں کہ ساڑھے سات پرہر تو جاتے ہیں رات دن میں بھجن میں, اور چار گھڑی یہ کیول وشرام کے لیے ان کو ملتی ہے, سو بھی کسی دن نہیں. تو اس پرکار کی بھجن میں ان کی نشا ہو جاتی ہے. پر روچی ہوتی ہے بھلا, روچی کا ارتھ کیا ہے؟ سواد لگا. ایک ہوتا ہے ابھیاس کا بھجن, ایک ہوتا ہے مٹھاس کا بھجن. ابھیاس کے بھجن میں کبھی کبھی جیو نہیں ملتا ہے, اور ابھیاس ہونے پر جو ہونے لگتا ہے وہ ابھیاس بس ہوتا ہے, اس میں سواد نہیں آتا. ابھیاس بس ہونے لگتا ہے بھائی جیب کا عادت پڑ گئی, وہ روٹی بڑا اچھا ہے, ابھیاس کے ہونا بڑا اچھا ہے. پر جب روچی ہو جاتی ہے تو وہ تو اچھا ہے, اس کو میٹھا لگتا ہے, سواد آتا ہے, اس کے سوا جو کچھ ہے وہ کھانے لگتے ہیں. یہ بھجن میں روچی کا یہ سواو ہے. نامے روچی چیتن مہاپربھو نے کہا نامے روچی جیوے گیا ویشنو سیون یا چھارا اور نہ ہی جانے سناتن. سارے اپدیش کرنے کے پشچات اپدیش کا نچوڑ بتاتے ہوئے مہاپربھو نے کہا سناتن سے کہ ان تین کے طور کے سادھن ہوگا اسے ہم نہیں جانتے. کیا کیا؟ نامے روچی جیوے گیا اور ویشنو سیون. نام میں روچی ہو, جیووں پر دیا ہو اور بھکتوں کا سنگ ہو, ان سے پرے اور کچھ ہے وہ سادھن ہوتا ہوگا ہم نہیں جانتے. تو بھجن میں روچی ہونے پر کیا ہوگا کہ وہ بھجن میں اتنا رس آئے گا کہیں سے نام سنائی دے, نام دور سے سنائی دے دیا شری کرشن کا اور وہ رونو پاگل ہو, دور سے نام سنتے ہی پاگل ہو. کرشن نام جبتے سنے ہوئے مائی تو ہم وہ بھولی ری بھون ہو تو بابری بھائی ری. کیا بات ہے, کیوں بابری ہو گئی؟ کرشن تو بولے کرشن نام ایسا ہی ہے, وہ نام جب کان میں آیا بس وہ ہرے کو آندولت کر کے اور ایسا اس میں رممان ہو گیا کہ بس جگت وسمرت ہو گیا. بھولی ری بھون ہو تو بابری بھائی ری انمت. یہی بات اس میں ہے ایون بک سپری نام کیرتا سپری نام کیرتیا جا تھا انگو درد چت اچھے ہرت کتھا آروگ چروت گائم انماد وت नृत्य से लोक बाह्य है, लोग क्या कहेंगे, ये परवा किसको है, फिर कोई कुछ भी कहे क्या भी कहे, ये नाश लोग दिखाने का नहीं होता। जिस कीर्तन में कीर्तनकारी नाचता है ये देखता हुआ कि लोग देखते हैं कि नहीं देखते, और नृत्य के बाद लोग क्या कहें कि कितना अच्छा कीर्तन हुआ, उसमें कीर्तन का की उन्मत्तता नहीं है, कीर्तनोन्माद नहीं है। कीर्तनोन्माद जो होता है वो कितना विलक्षण, ये महाप्रभु के जीवन में आता है, ये जब निमाई पंडित रहे, चैतन्य नहीं बने उस समय के बाद, ये बड़े महाराज न्याय के पंडित थे और विषयों के रही जो अत्यंत रूक्ष विषय है, उस न्याय के पंडित और शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण, ये जब गया से लौटने के बाद वो सारा न्याय जो था वो खो गया। पाठशाला में बैठे बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्याय के विद्यार्थी पंडित सामने बैठे उनसे पाठ लेने के लिए, ये पाठ लेने बैठे और ये बोले कृष्ण के ऐसव कृष्ण के ऐसव कृष्ण के ऐसव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षवाम। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी पाठ, बोले पाठ ही तो पाठ तो सिखा रहे हैं, दूसरा पाठ आया नहीं। वे सब के सब दूसरे दिन डेपुटेशन बना करके गए निमाई पंडित के गुरु जी के पास, शिकायत करने के महाराज हम तो पढ़ने जाते हैं और वो तो यूं करते हैं, तो उनको बुलाया, बोले निमाई क्या बात ऐसी बात, बोले हमारा ऐसी बात बात तो ऐसी बोला ख्याल रखना, उसका ख्याल रखेंगे। अब ख्याल रखने क्या है, वहां तो बदल गए ना, वहां तो वो दूसरी चीज हो गई, वो फिर पाठशाला बंद हो गई। तो क्या हुआ फिर इनका, ये कीर्तन करते तो जिस मोहल्ले से कीर्तन होता है, जिस मोहल्ले में होता, उस मोहल्ले से विद्वान न्याय के पंडितों ने निकलना बंद कर दिया। पंडितों ने सभा करके देखा कि तो बड़ी बदनामी हो रही है, हम इतने बड़े प्रौढ़ पंडित और हम कहीं उनके सामने नाचते हुए के सामने निकल जाए, हम नाचने लगे तो दूसरे पंडित हमारी हंसी करते हैं, इतने बड़े पंडित हो गए उस छोकरे के साथ नाचने लगे, तो जरा शर्म आती है। तो पंडितों ने उस मार्ग से निकलना बंद कर दिया। तो ये उनके नृत्य का नाम तो हम भी लेते हैं, पर हम ही पागल में होते, दूसरा जहां से पागल होगा, तो हमारा नाम दूसरा, वो सुप्रिय नाम कीर्त्य, उनका जो नाम था उस नाम में वो निष्ठा थी, वो नाम उनके प्रियतम का नाम था, उस नाम में उन्माद था, उस नाम में रस की धारा बहती थी, उस नाम में नाम का मद था। बस जहां तक वो मद की धारा पहुंची वहां तक सुनने वाले सब के सब उन्मत्त हो गए, ये नाम की निष्ठा। ये निष्ठा के बाद क्या होता है, आसक्ति हो जाती, बस यही राजात्मिका राजानुगा भक्ति का मूल है, भगवान में आसक्ति। सा परानुरक्ति ईश्वरे, शांतिलि जी ने कहा भगवान में आसक्ति, एक होता आसक्ति का भजन, एक होता है समझदारी का भजन। समझदारी का भजन वो निष्काम भी होता है, वो ज्ञान का भजन भी होता है, अंतकर्म के शुद्धि का कारण भी होता है, वहाँ विचार का नाम भी भजन है, वो सब ठीक है, किसी का दोष नहीं, पर ये जो आसक्ति का भजन है इसमें तो प्राण हृदय आसक्त हो जाते हैं, उसमें फंस जाता है मन, फंसावट जिसको मन की फंसावट कहते हैं, वो फंसावट हो जाती है, वो निकाले निकलती नहीं, हटाए हटती नहीं, मिटाए मिटती नहीं, वो नित्य नित्य हो जाती है, और सदा वो आसक्ति, जगत की आसक्ति, जगत की वस्तुएं, ये सारी की सारी ये अपूर्ण है और नष्ट होने वाली है, परिवर्तनशील है, इसलिए इनकी आसक्ति ठहर नहीं सकती। पर भगवान ये नित्य नवायमान है, नित्य नूतन है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य नवीन रूप में परिवर्तित होता रहता है, असमोर्थ उज्ज्वलता को लेकर वो उन्नति के शिखर पर जाता रहता है, शिखर कभी आता ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रति जब आसक्ति पैदा हो जाती है, तो आसक्ति पैदा होने के बाद फिर भाव पैदा होता है। ये भाव जो है ये प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम है। ये भाव जब पैदा हो जाए तब समझना चाहिए कि हम प्रेम के नगर के द्वार में प्रविष्ट हो गए। तब तक बाहर ही बाहर है, लेकिन बाहर भी अगर उसकी सीमा में आ गए हैं तो सीमा में तो जब भजन होने लगता है और जब उन साधुओं का संग, प्रेमी साधुओं का भजन, भजनानंदी साधुओं का, साधु सब तरह के होते हैं, बड़े भारी योगी होते हैं, उनका संग भी बड़ा अच्छा, योग मार्ग वालों के लिए किसी का विरोध नहीं, पर ये भजन वालों का जो संग है ना, जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, इनकी महाराज बड़ी महिमा। भागवत कार तो महाराज क्या क्या भागवत का सिद्धांत है, ये तो सुखदेव जी जानते होंगे, व्यास जी जानते होंगे, अपने को पता नहीं, ये महात्मा लोग जानते होंगे जो इन पर टीका करते हैं, अपने को तो पता होता कुछ भी है नहीं। शब्दों को सुनते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, तुलयामलवेनाति न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मृत्यानां सुमताशिष है। कितनी बढ़िया बात, वो कहते हैं कि किसी भगवत प्रेमी का संग मिल जाए, भगवान के साथी का साथ, भगवान में जो आसक्त फंसा हुआ भगवान में, उसका कहीं संग मिल जाए। और कितनी देर के लिए मिले, लवे नाथ, लव मात्र के समय के लिए भगवान के संगी का संग मिलता हो, और कोई कहे इस संग को छोड़ो, तुम बदले में मर्त्यलोक का राज्य ले लो, बोले छुट, ये फालतू बात करते हो, बोले अच्छा स्वर्ग का, बोले स्वर्ग की बात भी सुनने लायक नहीं, अरे बोले अपवर्ग ले लो मोक्ष, अपनर्भव ले लो मोक्ष, बोले ले कैसे, तुम्हारी इस अपवर्ग अभी अपनर्भव के साथ हमारे उसकी तुलना ही नहीं है, जो दो जात की चीज है वो, हम उस एक नवमात्र का जो प्रेमी का संग है उसके साथ तुलना नहीं होती तुम्हारे इस अपनर्भव की, तो लेने के बाद तो दूर रही, दो चीज समान होकर तो कहते ये लोग ये लोग, तो सोचना है तो यहाँ तो सोचने की बात नहीं। तो ये भगवत प्रेम का बड़ा महात्म्य, उस प्रेम के कारण से ही भगवान दामोदर बने, अपने उदर में भगवान ने रस्सी बंधाई, और ये रस्सी को भी कटार सिद्ध किया, इसीलिए रस्सी की वंदना की चंद पुराण में दामोदराष्टक, उसमें रस्सी के दाम ने, नमोस्तु दाम ने, नमोस्तु दाम ने कहकर के दाम की, उस रस्सी की स्तुति की है। वो रस्सी भी महाभाग्यवती की जो भगवान के उदर से बंध करके और जिसने भगवान के प्रेम का इतना प्रकाश किया, तो वो भी रस्सी भी धन्य है उनके, उसको प्रणाम। और रस्सी रस्सी थोड़ी थी, भगवान ही थे, हरिओम तत्सत।